समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है वेक्टर जनित रोगों से सुरक्षा। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112371717 और दूसरे नंबर 2331444 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर पुनीत, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं जरूर ये चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि वेक्टर जनित रोग क्या होते हैं, कैसे ये होते हैं।
देखिए, जो वेक्टर जनित रोग हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी वेक्टर के द्वारा ये स्प्रेड हो रहे हैं, तो जो वेक्टर हैं वो क्या हैं, यूजली जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे कि मच्छर हुआ, टिक्स हुआ, सैंड फ्लाइज हुआ, तो इनके द्वारा जो रोग हैं वो फैलाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोग करने का कारण है वो कोई दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है, लेकिन उसका जो माध्यम है जिसके थ्रू ये रोग हो रहे हैं वो ये वेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मलेरिया में एक साइकिल जो है वो ह्यूमंस में पूरी होती है, उसका दूसरा पार्ट जो है वो मच्छर के अंदर पूरा होता है। तो जो पूरी साइकिल बनती है वो आदमी और मच्छर में मिला के बनती है और मच्छर के द्वारा ये रोग फैलता है। तो इस प्रकार से जो वैक्टर जनित रोग हैं वो विभिन्न प्रकार के जो ये वैक्टर्स हैं उनके द्वारा फैलाए जाते हैं, जो यूजली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूजली आर्थ्रोपॉड्स होते हैं।
डॉक्टर साहब, ये जो वेक्टर जनित बीमारियां मतलब होती हैं, ये वायरस या बैक्टीरिया या परजीवी जिन्हें हम कहते हैं, ये कहीं पर भी फैल सकती हैं, कोई स्पेसिफिक प्लेस होता है वहां पर ये फैलते हैं ज्यादा?
देखिए, वेक्टर जनित रोग जहां फैलेंगे, जहां पर उस चीज का वेक्टर होना चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर हम हर साल बात करते हैं डेंगू फीवर की
जी,
हर साल कहते हैं डेंगू बुखार रहता है, तो हम कहते हैं कि जी मच्छर को आप वहां से हटाइए, एडीज का अगर हम ऐसी साइट बनाएंगे जहां पे उसका पनपने को उसको मौका नहीं मिलेगा तो बीमारी नहीं फैलेगी। अब बीमारी एडीज मच्छर नहीं कर रहा है, बीमारी करने का जो डेंगू है उसके लिए एक वायरस है जो जिम्मेदार है, लेकिन मच्छर के द्वारा एडीज के द्वारा ये बीमारी जो है फैल रही है, उसके काटने से बीमारी फैल रही है। तो जो जहां पे भी वेक्टर प्रेजेंट होंगे और वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा जो बीमारी कर रहा है, तभी ये बीमारी फैलेगी। सपोज किसी एरिया में अगर हमारे पास एनाफिलीज मच्छर है, लेकिन वहां पर मलेरिया का ट्रांसमिशन नहीं है, मलेरिया का कीटाणु नहीं है, तो मॉस्किटो होगा लेकिन मलेरिया नहीं फैलेगा। तो दोनों चीज जरूरी है, वेक्टर भी होना चाहिए, वो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और उसकी एक डेंसिटी होती है कि किस डेंसिटी में अगर प्रेजेंट है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या उस कम्युनिटी में ये बीमारी फैलेगी।
और इस बीच आज के हमारे पहले श्रोता दिल्ली से जयकिशन जुड़ चुके हैं। जयकिशन जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
जी नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
जी, प्रश्न पूछिए।
मैंने ये जो लोग कबूतरों को अपने छतों के ऊपर पालते हैं और कहते हैं कि जो बीट वो कबूतर करते हैं और काफी देर तक पड़ी रहती है और उसको जब वो सकेरते हैं कहते हैं कि उसकी जो गंध है उससे वो शरीर के अंदर जब चली जाती है तो वो फेफड़ों को नुकसान करती है और उसका कोई इलाज भी नहीं है, तो क्या ऐसा करना संभव है? क्या हमारे विज्ञान ने कोई तरक्की इसके ऊपर विचार किया या नहीं किया? ये मेरा एक क्वेश्चन है पहला।
जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे।
नमस्कार जयकिशन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हालांकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज हम इसे नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो जरूर इसका मैं उत्तर दूंगा आपको। जहां पे भी इस तरीके से कबूतर हैं, और कई जगह देखे गए हैं दिल्ली में आजकल जगह जगह लोगों ने खाने के लिए रखा हुआ, वहां कबूतर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो कबूतर है उसके द्वारा कुछ बीमारियां फैलती हैं, और इसको देखते हुए हम उस चीज को इनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो अवशिष्ट आते हैं और चीजें हैं उससे एक तरीके की बीमारी फैलती है और जो फेफड़ों को अफेक्ट करती है। तो आपका ये जो कहना है बिल्कुल सही है, और अगर बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम उस चीज़ को प्रिवेंट करें और जो उसका हैबिटेट है उसको उसी हैबिटेट में रहने दें, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा।
और दरभंगा बिहार से मोहन पासवान हमारे साथ में है। मोहन जी, आपका सवाल पूछिए।
इकट्ठे प्रणाम सर।
जी प्रणाम, सवाल पूछिए।
सर, वेक्टर जनित घातक रोग कौन कौन से हैं, इनके लक्षण कौन कौन से हैं, तथा इनसे बचने के उपाय क्या सब हैं सर?
जी
डॉक्टर, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मोहन पासवान जी। वेक्टर जनित कई सारे रोग हैं, जिनमें अगर हम कुछ मुख्य रोगों की बात करें तो मलेरिया आता है, फाइलेरिया आता है, कालाजार है, बिहार में काफ़ी लोगों को कालाजार भी होता है, जैपनीज इन्केफेलाइटिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। तो इस प्रकार से कई सारे जो रोग हैं वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। अभी भारत सरकार का जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है उसमें 6 बीमारियों को मुख्यतः लिया गया है, जिसमें से मलेरिया आती है, फाइलेरिया आती है, डेंगू आती है, जैपनीज इन्केफेलाइटिस आती है, चिकनगुनिया आता है। तो इस प्रकार से जो 6 बीमारियां हैं इसमें ली गई हैं। अभी क्या है कि बचना कैसे है, अगर हम बात करते हैं इनमें से आप किसी एक बीमारी की बात अगर हम लेते हैं कि डेंगू, तो हमें पहले ये पहचानना होगा कि इसके क्या लक्षण हैं तो और किस सीजन में होता है। तो ये देखा गया है कि जैसे अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो जब बरसात का खत्म होने का सीजन आ रहा होता है उस समय ये ज़्यादा फैलता है। जो इस समय का सीजन है अब इसका फैलाव रहेगा, और इसका जो वेक्टर है, जो इसका एडीज मच्छर है, वो 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में देखा गया है कि ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, और ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे वेक्टर को रोकने के लिए जब हम डेंगू की बात करते हैं कि कहीं पानी को इकट्ठा नहीं होने दें ताकि वेक्टर ना बढ़े। एक सवाल आपने और पूछा था कि लक्षण क्या होते हैं, तो हर बीमारी के लक्षण अलग होते हैं। मलेरिया के लक्षण अलग होते हैं, फाइलेरिया के अलग होते हैं, डेंगू के अलग होते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन जरूर होती हैं लक्षणों में, लेकिन अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को देख के जो चिकित्सक है उस पर डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके लिए ब्लड के टेस्ट भी उपलब्ध हैं, और जिस प्रकार से डायग्नोसिस बन के आती है उस प्रकार से जो भी उचित इलाज है वो किया जाता है। लेकिन प्रिवेंशन आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है, और लोकल एरिया में जो भी बीमारी है उसके लिए भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से हमेशा समय समय पर इस चीज़ के आपको सूचना दी जाती है कि किस प्रकार से इन बीमारियों से बचें, कौन सी बीमारियां इस समय फैल रही हैं और उसके लिए क्या करना है।
डॉक्टर पुनीत, नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति को ऐसे मौसम में, जो भी मौसम चल रहा है, फीवर हो जाता है, तो उससे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
सबसे पहली बात है कि अगर आपको फीवर हो जा रहा है तो आप अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल नहीं जाएं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लेना है, बुखार ज्यादा है, तो पैरासिटामोल की टेबलेट लें, लेकिन उसके अलावा और कोई दूसरी टेबलेट नहीं लें। और अगर तकलीफ बढ़ रही है तो जो भी योग्य चिकित्सक है, जो भी प्रशिक्षित चिकित्सक है, जो भी आपके घर के पास चिकित्सालय है, आप वहां पे जाएं ताकि आपकी बीमारी की डायग्नोसिस बन पाए और आपको उचित इलाज मिल पाए।
और इस बीच आगरा से हमारे आज के अगले श्रोता है राजू लवानिया। राजू जी, प्रश्न पूछिए आपका।
निखिल जी नमस्कार।
जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए।
डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार
डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जैसे आपने कहा वेक्टर जनित रोग,
जी,
तो ये जो मच्छर, ये जो वायरल फीवर फैलता है, इन दिनों में वायरल फीवर भी कुछ ज्यादा ही फैलने की संभावना बढ़ती भी है और होता भी है वायरल फीवर लोगों को,
जी,
तो ये भी वेक्टर जनित रोगों में से है? और अगर ये है तो कौन से मच्छरों के काटने से ये रोग ज्यादातर फैलता है, वायरल फीवर जो होता है?
बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है इनका।
जी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सही कहा आपने निखिल जी। देखिए, सामान्यतः अगर बुखार होता है तो दो तरीके से होता है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो इन्फेक्शियस है या तो बैक्टीरिया से होगा या वायरस से होगा, कुछ प्रोटोजोआ भी करते हैं जैसे कि मलेरिया का है। तो वायरल फीवर एक ब्रॉड टर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुखार वायरस के द्वारा फैलते हैं, और वायरस के द्वारा बहुत सारे बुखार फैलते हैं, डेंगू भी एक तरीके से वायरस है, अभी कोविड आया था वो भी वायरस था, और इसके अलावा कई सारे रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं। तो जो वायरस के द्वारा फैलते हैं बीमारियां, उसको हम वायरल फीवर कहते हैं। अधिकतर जो वायरल फीवर्स हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारे पास या तो फ्लू होता है या रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो होती हैं वो सामान्यतः वेक्टर से नहीं होती हैं, वो सामान्यतया सांस के द्वारा होती हैं। या जैसे आप कोविड के समय था तो हम प्रिकॉशन ले रहे थे, वो मच्छर से नहीं हो रही थी, वो हम अगर सांस ले रहे थे या जो हमारे फोमाइट्स थे वो कहीं जा रहे थे तो उसके द्वारा, या थूक जा रहा था तो उसके द्वारा वो बीमारियां हो रही थी या होती हैं। तो वायरल फीवर जो हम सामान्य भाषा में कहते हैं उसमें अधिकतर रेस्पिरेटरी इलनेसेस की बात कर रहे होते हैं, और उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन अलग है। लेकिन डेंगू जैसी जो है या चिकनगुनिया है, ये सारी चीजें, ये भी वायरल एक तरीके से फीवर है, और ये वेक्टर के द्वारा आगे प्रोपोगेट होते हैं।
शिमला से राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश जी, आप सवाल पूछिए आपका।
जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
नमस्कार,
मेरा एक सवाल है, जैसे कि वेक्टर में जो मच्छर की जो है, इसकी जो वैक्सीन कौन कौन सी है, क्या इसकी वैक्सीन लगा सकते हैं या इसकी वैक्सीन है तैयार?
जी राकेश जी, बड़ा अच्छी और चीज़ पूछिए, क्योंकि अगर हमें पास वैक्सीन मिल जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पा जाएं। और मलेरिया के लिए बहुत सालों से काम हो रहा था, बहुत सालों से काम हो रहा है, और बहुत ट्राई भी हुआ लेकिन बहुत अच्छी वैक्सीन नहीं आ पाई थी। लेकिन हाँ, अभी न्यूज़ है, वैक्सीन उपलब्ध है अफ्रीका के कुछ कंट्री में, और उसका मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% प्रोटेक्शन है, लेकिन हाँ उसका प्रोटेक्शन है, और अफ्रीका के कुछ कंट्री में दी जा रही है, जहां तक मलेरिया की बात है। डेंगू की वैक्सीन भी उपलब्ध हो रही है और कुछ कंट्री में है, अभी 100% उससे प्रोटेक्शन नहीं है। भारत में उस वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, भारत सरकार के माध्यम से पिछले साल इसका परीक्षण स्टार्ट किया गया था, और फेज 3 ट्रायल भारत के अंदर चल रहा है, जिसके रिजल्ट्स आएंगे, और उस हिसाब से जो भी पॉपुलेशन होगी जिसमें ये लगेगा कि सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा, उस पॉपुलेशन को समय आने पर ये वैक्सीन भारत में भी दी जाएगी।
और नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हमारे साथ अविनाश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न क्या है आपका?
जी नमस्ते सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
नमस्कार
जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे चिकनगुनिया हो गया या फिर डेंगू जब मच्छर काटने से फैलता है, लेकिन ये जो मलेरिया होगा ये भी मच्छर काटने से फैलता है, लेकिन इससे जो हम अपने शरीर में कैसे महसूस करें कि अभी मच्छर काटा है तो मतलब क्या कुछ होगा, तो इसका लक्षण कि पता चल जाएगा कि नहीं मुझे वो अब मलेरिया का वायरस मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका है या फिर डेंगू का? और जब नॉर्मली हम जब मलेरिया में देखिए क्या होता है, बुखार आता है तो हम जब पैरासिटामोल ले लेते हैं तो कुछ हद तक बुखार कम भी जाता है, लेकिन बाद में फिर दोबारा वो उसका प्रभाव पड़ता है, तो इससे बचने के लिए मतलब कैसे हम क्या कर सकते हैं?
जी अविनाश जी, बहुत आपने जानकारी जाननी चाहिए कि हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे शरीर में मलेरिया का मच्छर या कीटाणु चला गया है।
ये भी कहना चाह रहे थे कि एक बार फीवर आया, फिर शायद बार दोबारा भी आया, तीसरी बार आया।
मैं आऊंगा, दोनों सवालों पे आऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये जानना कि हमारे शरीर में कौन सा कीटाणु गया है, हम ऐसे आंखों को देख के नहीं बता सकते। जहां तक मलेरिया के सवाल है, और ये जो है एनाफिलीज करके एक मॉस्किटो होता है, उसके द्वारा फैलता है। और अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो एडीज मॉस्किटो होता है, टाइगर मॉस्किटो होता है। अब इनकी थोड़ी हैबिट अलग होती है, एडीज मॉस्किटो है यूजली दिन के समय काटता है, जो एनाफिलीज है वो शाम के समय काटता है, जिस समय सूरज डूब रहा होता है और अंधेरा होने वाला होता है उस टाइम है। तो इनके जो बाइटिंग हैबिट है वो अलग अलग हैं, मॉस्किटो अलग अलग हैं, और कई बार बुखार आने के पैटर्न अलग हैं। तो हम जो कहते हैं कि जब कोई मरीज आता है तो हम एक तो ये देखते हैं कि उसके साइंस सिम्टम क्या हैं, जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं तो हम ये करते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है या इस व्यक्ति को ये बुखार हो सकता है, और उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के बाद हम जो भी उपयुक्त टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करते हैं और उससे फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं, और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये तो रही इस चीज की बात। अब आपने बोला पैरासिटामोल लेके उतर जाता है, देखिए पैरासिटामोल जो दवाई है वो आपका बुखार उतारने की दवाई है, वो किसी कीटाणु को नहीं मार रही है, वो ना मलेरिया के कीटाणु को मारेगी ना डेंगू कीटाणु को मारेगी, वो आपका बुखार जो एक सिम्टम आया है बीमारी के फलस्वरूप उसको कम करने में काम आ रही है। मलेरिया में वैसे भी क्या होता है कि लगातार फीवर नहीं रहता, मलेरिया की कई स्टेजेस होती हैं कि सबसे पहले आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आएगा, ठंड लगेगी, शरीर में कपकपी आएगी, उसके बाद क्या होगा एकदम से पसीना आएगा और आपका बुखार उतर जाएगा, फिर आपको एक दिन बाद या दो दिन बाद बुखार आएगा। ये डिपेंड करता है कि मलेरिया के कौन से तरीके के आपके अंदर कीटाणु गया है, वाइवैक्स है, मलेरिया है, फैलसी पैरा में अलग अलग तरीके कीटाणु है, तो यूजली एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के इस तरीके से मलेरिया में बुखार आता है जो क्लिनिकल देखा गया है।
और प्रमोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त है जयपुर से। प्रमोद जी सवाल पूछिए आपका।
जी नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रहा था परिवार में किसी एक व्यक्ति को वेक्टर जनित रोग हो जाता है तो उस परिवार और समाज के लिए, उस कॉलोनी के लिए क्या करना चाहिए, कैसे सचेत रहें कि जैसे क्या पूरे में फैल सकता है क्या, प्लीज।
देखिए बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। अगर एक चीज होती है डेंसिटी, वेक्टर की डेंसिटी कितनी है, फिर अंदर कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो व्यक्ति के अंदर हैं, तो उन सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, प्रिवेंशन जरूर हर चीज का है, और वो इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए अगर आप कम्युनिटी में मच्छर है लेकिन उस चीज का कीटाणु नहीं है, मान लीजिए आज एडीज मॉस्किटो है लेकिन डेंगू का जो वायरस है वो किसी के ब्लड में है ही नहीं, तो अगर एडीज काटेगा तो उसे वो वायरस नहीं उसके अंदर जाएगा और वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो सब ये ऐसी बीमारी नहीं जिसे हम छुआछूत की बीमारी कहें कि परिवार में एक को होगी तो दूसरे को जाएगी, तीसरे को जाएगी। ये निर्भर करता है कि मॉस्किटो की डेंसिटी कितनी है, जो वैक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद आदमी के ब्लड में वो चीज़ है उसकी डेंसिटी कितनी है, चाहे वो मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आपको कितना रिस्क है, उन सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। लेकिन हाँ, अगर किसी को है जैसे अगर डेंगू है तो उसे मच्छर के अंदर रखें ताकि ऐसा मच्छरदानी के अंदर रखें ताकि ऐसा नहीं हो कि एडीज उसे काट के फिर और ज्यादा आगे स्प्रेड करे, जब तक ठीक नहीं हो जाए। तो उस चीज के लिए है प्रिवेंशन रखनी है, सबसे अच्छी चीज है अपना बचाव रखना है। अगर हम मॉस्किटो बॉर्न डिजीज की बात करते हैं तो खास करके डेंगू का सीजन आ रहा है तो हम लोग बताते हैं कि भाई पर्सनल प्रोटेक्शन कीजिए, आप पूरा शरीर ढक के रखिए, ऐसे कपड़े पहनिए जिससे शरीर ढका रहे, अगर खुला हुआ है तो ऐसी क्रीम लगाइए जो मच्छरों को भगाती है, साथ ही साथ अपने घर के आसपास के एरिया में कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने दें क्योंकि वही मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट होती है। कुछ साइड तो आप जानते हो जैसे कूलर में है, लोग कहते हैं सर हम एवरी 7 डेज पानी बदल देते हैं या उसमें हम थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो छिपी होती हैं, जो इजली एक्सेसिबल नहीं होती हैं, जैसे छत पे कोई टूटा बर्तन पड़ा हुआ है, कोई गमला में है उसमें थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, कोई टायर पड़ा हुआ है, तो इन सब जगह भी मॉस्किटो ब्रीड कर सकता है। अगर आप उनको साफ करके रखेंगे, मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट हटाएंगे, मॉस्किटो नहीं होंगे, तो इससे हम बहुत अच्छे तरीके से रोकथाम कर पाएंगे।
डॉक्टर पुनीत, इसमें क्या सच्चाई है इस बात में कि यदि एक मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा उसे फीवर हुआ, उसके बाद वही मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसे भी सेम फीवर होगा?
देखिए मैंने बताया ना कि ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थिंग है, इट्स नॉट दैट कि हमने उसको टच किया और इसको टच किया हो गया, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर की अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग है। अब जैसे अगर हम फाइलेरिया की बात करें, अगर बहुत ज्यादा इन्फेस्टेड हो गया मॉस्किटो तो उसके अंदर मॉस्किटो फट जाएगा, मर जाएगा, ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा, तो एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए। अगर बहुत कम होगा तो मॉस्किटो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, तो ऑप्टिमम लेवल होगा तभी ट्रांसमिट करेगा। अगर उसके अंदर इतने ज्यादा आ गए लार्वी कि अब वो सस्टेन नहीं कर पा रहा तो मॉस्किटो कई बार फट जाते हैं, खास करके फाइलेरिया जैसे हम बात करते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि हाँ, एक से ज्यादा व्यक्ति को अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है और बैठ रहा है तो वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है।
इस बीच हरियाणा से संजीव कुमार हमारे साथ में है। संजीव जी प्रश्न पूछिए।
हेलो नमस्कार जी।
नमस्कार
डॉक्टर साहब को नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार संजीव जी।
डॉक्टर साहब मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ।
जी जी संजीव जी।
अच्छा सर, अभी पिछले कुछ दिनों से ना, एक तो आंखों में से पानी निकलना और गर्म सांस, गर्म नाक में से गर्म हवा महसूस होना और कुछ बुखार जैसे महसूस होना और पेट में दर्द, पिछले कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम है सर। और मैं दिमाग की भी दवाई खाता हूँ जो मेंटल इलनेस है, मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया सर, पेंशन मिलती है, तो अब क्या किया जाए सर, मतलब क्या चीज है ये बुखार जैसे महसूस होना, आंखों में से पानी निकलना और नाक में से नजला निकलना, वो मगज में, तो इसके बारे में प्लीज कुछ सलाह दीजिए।
जी डॉक्टर साहब, आपकी जिज्ञासा का समाधान जरूर करेंगे।
जरूर जरूर। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर आपके घर में थर्मामीटर है तो आप एक बार देखिए कि सच में बुखार है या आपको महसूस हो रहा है। ये दो चीजें, अगर आपको बुखार है और इस तरीके से आपको नाक बह रही है या सर में भारीपन है और साथ में बुखार है और आपको ज्यादा दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, तो मैं ये कहूंगा कि एक बार जो आपके घर के पास डॉक्टर है उनसे आप सलाह लें, वो देखेंगे कि इसमें चिकित्सा की जरूरत है या नहीं है। लेकिन जो आपने सिम्टम बताए कि हल्का सा बुखार रह रहा है, थोड़ा सा नाक बह रही है, तो इस समय बहुत सारे लोग ये शिकायत लेके आ रहे हैं और यूजली 5-7 डेज में ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि टू मेक श्योर, आप इस चीज को निश्चित करने के लिए कि यह एक सामान्य वायरल फीवर ही है और कुछ नहीं है, जो भी आपके घर के पास चिकित्सक हैं उनसे एक बार दिखा लीजिए, अगर आपको फीवर रहता है वो आपको बता पाएंगे। लेकिन आपके बात सुन के ऐसा लग रहा है कि एक सामान्य है, ठीक हो जाना चाहिए।
और महाराष्ट्र सोलापुर से प्रकाश जी फोन लाइन पर इस वक्त हैं। प्रकाश जी, आपका सवाल क्या है?
मेरा यह सवाल है कि हमारा परिसर में, हमारे स्कूल में हम साफ सफाई करते हैं, यह बैक्टीरिया वायरस रोकते हैं, यह हर आदमी ने ऐसा काम करना चाहिए, और जो लोकल बॉडी लोकल संस्था होती है उसने ज्यादा प्रयास करना चाहिए
जी।
उसके बारे में आप क्या बताइए? और यह बैक्टीरिया जन आधार से हर साल कितने आदमी की जान जाती है
जी? डॉक्टर साहब
देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आप अपने स्कूल में, अपने आसपास जगह जहाँ पे भी हैं वहाँ पूरा साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, और ये मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक नागरिक को इस चीज़ में जैसे आप कार्य कर रहे हैं कार्य करना चाहिए। अगर हमारी जनता जागरूक होगी, जो हमारा प्रयास रहता है कि हम सब में जागरूकता फैलाएं, अगर जागरूकता रहेगी, साफ सफाई रखेंगे, मच्छरों का जो ब्रीडिंग का जगह है उसको हटाएंगे, मच्छरों को नहीं पैदा होने देंगे, तो हम इन बीमारियों से बहुत हद तक बचे रहेंगे। अब आपने एक सवाल पूछा कितने लोग मरते हैं, तो देखिए अलग बीमारियां हैं उनसे अलग अलग मॉर्टिलिटी है, और भारत ने इस संबंध में बहुत प्रगति की है। अगर हम प्रगति की बात करते हैं, मलेरिया की अगर बात करते हैं, बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी किसी समय, लेकिन इस समय चिकित्सा विज्ञान का सहयोग से और हमारा जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है उसके सहयोग से कि हमें इस चीज़ को हटाना है, तो देखिए हम इस साल की अगर बात करें, किसी समय हजारों में लोग मरते थे, पिछले साल की अगर बात करें तो 80+100 से कुछ कम लोगों की डेथ हुई है। इस साल अगर मलेरिया से बात करें तो मुझे लगता है 5 या 6 डेथ अभी तक हुई है, साल अभी करीब आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। तो अलग अलग बीमारी की अलग अलग मॉर्टिलिटी है। डेंगू में ये होता है कि हर 3 से 4 साल में एक बड़ी लहर आती है और उसमें जो मरने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यूजली 0.1% के आसपास उसमें मॉर्टिलिटी है। लेकिन अगर किसी को डेंगू हेमरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम है तो उसमें मॉर्टिलिटी काफी हाई होती है।
गुरुग्राम से हमारे आज के अगले श्रोता हैं सुभाष। सुभाष जी, आपका सवाल।
जी नमस्ते सर।
नमस्ते।
आमंत्रित डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
नमस्कार सर। नमस्कार सुभाष जी।
सर मैं ये पूछना चाहता था कि आमतौर पर जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, मच्छर के काटने से होती हैं, कि जैसे कि प्रचलित है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, फलेरिया है, जो भी है सर अन्य, तो क्या वो बीमारी और आज के परिचर्चा में जो जिस मच्छर के काटने से जो बीमारी का मतलब चर्चा चल रही है, वो उसके काटने से क्या कोई आंतरिक प्रॉब्लम है, आंतरिक अंगों पर कोई समस्या होती है या बाह्य मतलब त्वचा पे या कुछ ऐसी कोई समस्या, और होती है तो क्या होती है सर?
बहुत बढ़िया सवाल पूछा।
बहुत बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा आपका सवाल, इसलिए अच्छा लगा कि आपने सवाल पूछा है और आपके सवाल के माध्यम से शायद जितने श्रोता हैं उनको मैं इस बारे में थोड़ा सा जागरूक कर पाऊंगा।
जरूर
जरूर। अगर भी हम दो बीमारियों की बात करते हैं, खास करके मलेरिया और डेंगू की बात कर लेते हैं। आपने पूछा क्या अंदर के अंगों को नुकसान होता है? जरूर, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, चाहे मलेरिया हो या डेंगू में अगर शॉक सिंड्रोम हो रहा है या डेंगू हेमरेजिक फीवर है, तो जो आंतरिक अंग हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं और जिसकी वजह से मॉर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और कई सारे अंग हैं, जैसे मलेरिया में एक स्टेज होती है सेरेब्रल मलेरिया, दिमाग को इफेक्ट कर देता है, लीवर को इफेक्ट हो जाती है, स्प्लीन इफेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से डेंगू में ऐसा ऑर्गन्स हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जरूर उसमें इफेक्ट होते हैं। और जहाँ तक शरीर में चकत्ते की बात आपने बोली है, डेंगू में ऐसा देखा गया है कि अगर ब्लीडिंग होती है तो चकत्ते एक तरीके से जो इंटरनल कैपिलरी ब्लीडिंग जिसे हम बोलते हैं वो होती है, उसकी वजह से बन जाते हैं। और बाद में और ऑर्गन्स को भी, जैसे अगर बीमारी प्रोग्रेस करती है, अफेक्ट करती है, तो अंदर के ऑर्गन जरूर अफेक्ट हो सकते हैं।
पुणे से आज के अगले कॉलर हैं अशोक जी। अशोक जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब से पूछिए।
हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार, और आपको भी नमस्कार जी।
जी नमस्कार।
ये मेरा कहना है कि जो पेट डॉग है घर में, पालतू कुत्ते या बिल्ली या रेती किचन तक लोग नॉर्मली आने देते, तो क्या उनसे वेक्टर बॉर्न डिजीज स्प्रेड हो सकता है या उनसे सलाइवा से हो सकता है, और प्रिकॉशन क्या रहेगा उसका प्लीज।
देखिए जो बीमारियां बिल्ली से और कुत्ते से जरूर कुछ बीमारियां होती हैं जो ट्रांसमिट हो सकती है, अगर देखिए पेट डॉग हैं और उनको आपने ठीक से इंजेक्शन नहीं दिए हुए हैं, केयर नहीं की हुई है, एक रेबीज है जिसके आपको मालूम है कि डॉग बाइट से हो सकती है, बिल्ली से भी हो सकती है, उसके अलावा बिल्ली से कैट स्क्रैच फीवर हो जाता है, उसके अलावा अगर कुत्ते का आपने रखा हुआ है और उसको पेट में उसके कीड़े हैं तो उससे हाइड्रेटेड सिस्ट करके एक बीमारी हो जाती है जो लीवर में जाके सिस्ट बना देती है, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और भी कई सारी बीमारियां अगर आपने पैट्स को उस तरीके से नहीं रखा हुआ है, उनको वेटनरी डॉक्टर को नहीं दिखाया है, उनको उचित वैक्सीन नहीं दिलाई हुई है, उनको डीवर्मिंग नहीं की हुई है, तो ये बीमारियां हो सकती हैं।
हिसार से राजू अग्रवाल हमारे साथ में है। राजू जी आपका प्रश्न क्या है।
नमस्कार जी।
नमस्कार।
नमस्कार,
मैं चौधरी वास्ते राजू अग्रवाल
जी। प्रश्न पूछिए
जी। पहले बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह हुआ करते, आजकल सरसों कटते ही मार्च अप्रैल में ये मच्छर शुरू हो जाते, कि ये भी बीमारी लगते हैं जी।
देखिए मच्छर से कुछ बीमारियां होती हैं और अलग अलग मच्छर से अलग अलग बीमारियां होती हैं। आप हिसार से बोल रहे हैं तो अगर इस तरफ ये देखा गया है, जो एडीज मॉस्किटो रहता है और रुके हुए पानी में ब्रीड करता है, और मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 16 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके ग्रोथ के लिए सबसे उचित तापमान होता है, 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जिसमें ये अच्छे से पैदा होता है, तो अगर कहीं भी रुका हुआ पानी है तो उसमें ये मच्छर पैदा हो सकता है और बीमारियां कर सकता है। इसी प्रकार से अगर एनाफिलीज मॉस्किटो है किसी जगह और वहाँ पे मलेरिया के केसेज हैं तो वो मलेरिया ट्रांसमिट कर सकता है। हमारे खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में फाइलेरिया जो बीमारी है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से मेनली होती है। तो इस प्रकार से अधिक अलग अलग जगह में अलग अलग बीमारियां जो हैं मच्छरों से फैल सकती हैं। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस कुछ इलाकों में फैल जाती है, तो अलग अलग जगह अलग अलग बीमारी मच्छरों से फैल जाती है। तो मेरा आपको यही अनुरोध है कि जहां पे भी मच्छर की आप ब्रीडिंग साइट देखते हैं, जहां वो पैदा हो सकते हैं, उन ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करना है, और उसके अलग अलग तरीके हैं कैसे खत्म करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी इकट्ठा नहीं होने दें, जहाँ पे भी आपके कहीं अगर गांव से हैं जहाँ पे भैंस के लिए पानी है कुछ है, उस टंकी को साफ करते रहें, कूलर वगैरह का पानी निकालते रहें, नहीं तो हर 7 दिन में उसमें कैरोसिन ऑयल डालते रहें।
और हमारे नियमित श्रोता है रमा शंकर वाजपेयी रायबरेली, उनसे हम बात करते हैं। रमा शंकर जी प्रश्न पूछिए आपका।
नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि मच्छर और बरसाती कीड़े दोनों काटते हैं, दोनों में खुजली होती है, इसमें क्या अंतर?
जी दोनों की बात कर रहे हैं।
जी देखिए, जो भी कीड़े काटते हैं ना, एक तो लोकल रिएक्शन होती है, जो आप खुजली की बात कर रहे हैं वो एक लोकल रिएक्शन है, क्योंकि उनके अंदर से कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जिसके रिस्पांस में बॉडी से कुछ तत्व सिक्रीट होते हैं जो वहां पे स्वेलिंग कर देते हैं, लाल पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से खुजली मचती है। तो वो किसी भी कीड़े के काटने से हो सकती है, मच्छर से हो सकती है। लेकिन अगर हम जहाँ वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात कर रहे हैं, मच्छर ने काटा तो एक तो है कि जहाँ पे काटा वहाँ पे खुजली हो सकती है, लेकिन अगर वो मलेरिया वाला मच्छर हुआ तो आपको मलेरिया कर सकता है, डेंगू वाला मच्छर हुआ तो डेंगू कर सकता है आगे चल के, अगर फाइलेरिया वाला हुआ तो फाइलेरिया कर सकता है। तो ये चीज़ है, और कई सारे कीड़े हैं जो और बीमारियां, मलेरिया नहीं फैलाते हैं, डेंगू नहीं फैलाते हैं वो जो कीड़े होते हैं, लेकिन वो और दूसरी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो जो खुजली होना है, लाल होना है, वो एक लोकल सिम्टम है किसी भी कीड़े के काटने का।
डॉक्टर साहब, ऐसे मौसम में और वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, इस पर एक ओवरऑल अगर आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें तो।
देखिए जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बार बार यही कहूँगा कि 2-3 चीज़ों पर बहुत ध्यान रखें। एक तो अपने आसपास अभी सीजन आ रहा मच्छर का, पानी नहीं इकट्ठा होने दें। अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। मच्छर के काटने से बचाने के लिए आप पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के रखें। डेंगू का मच्छर यूजली दिन के समय काटता है, तो दिन के समय आप ऐसा रखें कि पूरे कपड़े पहन के, छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कवर्ड हों, जहां पे खुला हुआ वहां पे उनके पास एंटी मॉस्किटो की जो क्रीम है वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने अगर आसपास ब्रीडिंग साइट को हटा देंगे, उनको पनपने नहीं देंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो मच्छर पैदा नहीं होंगे और हम इन बीमारियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। यही मेरा एक संदेश है
जी। श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम में समय नहीं बचा इस चर्चा को और आगे बढ़ाने का। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। अगले सोमवार रात ठीक 9:30 बजे फिर मिलेंगे। नमस्कार।